तवला लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेश, ओम नमः सिद्धेश, ओम नमः सिद्धेश, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
नमो वज्रायाणं,
नमो लोए सौवसाहूणं, सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुवममपत्थसौखमणवज्रम्, केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरञ्जिनम् नमः। ये धवला नामक जो ग्रंथ है, आचार्य श्री भीमसेन स्वामी ने इसकी रचना की है और यह षटखंडागम की टीका है। आपको पता है षटखंडागम की रचना भगवान पुष्पदंत और भूतबली ने की हुई है। उसके 61 नंबर के पृष्ठ पर आए हम, तो हमने वो ग्रंथ का प्रमाण वगैरह देखा था। अभी ग्रंथ का नाम बताने जा रहे हैं। ग्रंथ के शुरुआत में मंगल करते हैं, उसका निमित्त बताते हैं, हेतु बताते हैं, फिर उसका परिमाण यानी प्रमाण बताते हैं, अब उसके ग्रंथ का नाम। तो यहां से पढ़ेंगे, बीच में लिखा है ना नाम। इस शास्त्र का नाम जीवस्थान है, कारण कारण का व्याख्यान पहले कर आए हैं, उसी प्रकार यहां पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिए। यानी नाम का जो कारण है उसमें बताए ना, अलग अलग नाम किस कारण से हो सकते हैं, उसकी चर्चा हुई थी अपनी, वो यहाँ पर भी समझना। अब जो छठा पॉइंट है ग्रंथ के कर्ता, उसका यहाँ व्याख्यान चलेगा। कर्ता के दो भेद है, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। इनमें से अर्थकर्ता का द्रव्यादिक चार के द्वारा निरूपण किया जाता है। द्रव्यादिक चार ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। उनमें से पहले द्रव्य की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं। यानी मूल जो अर्थ जो है वो बताने वाले कौन है, तो कहते हैं तीर्थंकर भगवान इसके कर्ता है, और हमारे लिए तो महावीर भगवान है, क्योंकि उनसे ये उपदेश की परंपरा चली आ रही है। जैसे कहते हैं मूल उपदेशकर्ता या मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, अभी उनकी बात यहाँ बता रहे हैं। यानी द्रव्य की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण। पृष्ठ संख्या 61। पसीना रज अर्थात बाह्य कारणों से शरीर में उत्पन्न हुआ मल। देखो पसीना दूसरा है रज, रज यानी धूल मिट्टी या बाह्य अन्य बाहर से आकर चिपकी हुई चीजें, उसको रज में ले लिया। मल अर्थात शरीर से उत्पन्न हुआ मल, शरीर में से जो मल उत्पन्न होता है उसको मल कहा। रक्त नेत्र और कटाक्ष रूप बाणों का छोड़ना आदि शरीर में होने वाले संपूर्ण दोषों से रहित। यानी शरीर के जो कुछ कषाय को बताने वाले चिन्ह है, जैसे आंखें लाल होना या जो कुछ अन्य अन्य बातें, तो उस शरीर के शरीर संबंधी जो शरीर में होने वाले दोषों से रहित। समचतुरस्र संस्थान वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वहाँ भ रह गया है कोई पुस्तक में, भी पहली बार पढ़ रहे तो डालना, वज्र ऋषभ नाराज सहनन। दिव्य सुगंधमयी, ये शरीर की बात है। सदैव योग्य प्रमाण रूप नख और रोम वाले, हम कहते हैं ना ही बढ़े न खकेश, केवल ज्ञान होने के पश्चात ये बात नहीं पड़ती। आयुध, वस्त्र, आभूषण, आभूषण, आयुध, वस्त्र और भय रहित, यानी सबसे रहित लेना। आयुध आभूषण रहित है, आयुध रहित है, वस्त्र रहित है, भय रहित, सौम्य मुख आदि से युक्त ऐसे विशिष्ट शरीर को धारण करने वाले, फिर देव, मनुष्य, तिर्यंच और अचेतन कृत चार प्रकार के उपसर्ग से रहित बताएंगे। फिर यानी वो चार प्रकार के उपसर्गों से रहित और परिषहों से रहित, तो परिषह में एक क्षुधा आदि 22 परिषह, राग द्वेष कषाय और इंद्रिय विषय आदि संपूर्ण दोषों से रहित, यानी उपसर्गों से रहित, परिषहों से रहित, राग द्वेष से रहित, राग द्वेष का ही ऐसा कषाय होता है फिर भी उसको अलग से लिया, इंद्रिय विषय आदि संपूर्ण दोषों से रहित। अब उनकी वाणी बदल, वाणी संबंधी बता रहे, एक योजन के भीतर दूर अथवा समीप बैठे हुए, वो भ का ब करना, बैठे हुए 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं से युक्त ऐसे तिर्यंच देव और मनुष्यों की भाषा के रूप में परिणत होने वाली, ये दिव्य ध्वनि है, वो सब जीव अपनी अपनी भाषा में वो समझ लेते, उस रूप वो परिणत होती है, तथा न्यूनता और अधिकता से रहित, मधुर, मनोहर, गंभीर और विशद, विशद है स्पष्ट, ऐसी भाषा के अतिशय को प्राप्त, यानी ये भाषा का अतिशय बताया है और केवली भगवान की ऐसी होती, ये दिव्य ध्वनि उनका एक अतिशय भी बताए थे। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क कल्पवासी देवों के इंद्रों से, यानी ये सभी देवों के इंद्र देय हैं। विद्याधर, ये ज्योतिष केंद्र में वो चंद्र सूर्य वो इंद्र वो भी आ गए, यानी इसमें से एक चक्रवर्ती और एक चीरियन छोड़कर 98 तो इनमें ही होते इंद्र सारे। भवनवासी के कितने होते हैं? 40 इंद्र और प्रति इंद्र, 10 प्रकार के कुल है उनके और उनमें हर एक के दो दो है, दक्षिण के और उत्तर के, तो और फिर उनके इंद्र भी और प्रति इंद्र भी। व्यंतरों में 8-8 होते हैं तो 8×32 हो जाएगी। ज्योतिष में चंद्र और सूर्य, और कल्पवासी देवों के 24, 12 और 12 इंद्र होते हैं, 12 प्रतिंद्र होते हैं। फिर विद्याधर चक्रवर्ती, हाँ भवनवासी 40,
व्यंतर 32,
व्यंतर के इंद्र जो है वो 32, ज्योतिषकों के 2, कल्पवासियों के 24। नाइन्टी एट हो गए। एक चक्रवर्ती और एक सीरियन चौंका सिंह छोड़ दिया, या अष्टापद जिसको कहेंगे, देवों के इंद्रों से विद्याधर चक्रवर्ती बलदेव नारायण राजा अधिराज महाराज अर्धमंडलिक, हमने देखा था इनका स्वरूप, मंडलिक महामंडलिक राजाओं से इंद्र अग्नि वायु भूति सिंह व्याल आदि इंद्र अग्नि क्यों लिखा है? वही तो तीर्य इंद्रेभ्य ऊपर तो लिखा है महाराज अर्धमान मंडली के इंद्रा मंडली का इंद्र अग्नि अग्नि वायु भूति सिंह व्यालादि ओ अभी मुझे समझ में आया इसका अर्थ समझाएगी आप उस वाक्य का अर्थ क्या है देखो देखो फिर पढ़ते हैं हम पेज नंबर 62 पहले पैराग्राफ के लास्ट में आए हैं यहाँ महावीर स्वामी का इन्हें तीर्थंकरों का वर्णन चल रहा है तीर्थंकर ये मूल ग्रंथ करता है उसकी बात चल रही है तो फिर उनके शरीर की बातें बताई वो कितने इंद्र आते वो बात बताई और उनके कौन कौन से वो पूजनीय है वो बात बता रहे हैं यहाँ पर विद्याधर चक्रवर्ती बलदेव नारायण राजा अधिराजा अभी वगैरह सब बता दिए तो राजा महामंडलिक महामंडलिक बताए पहले पैराग्राफ नीचे से तीसरी लाइन 62 पेज और उसके बाद तीर्यंचों को बताना था तो इंद्र अग्नि वायु भूति सिंह व्याल तो ये ऐसा लेना है इंद्र भूति वायु भूति और अग्नि भूति 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 तीनों को मिलकर भूति शब्द लगाना है हाँ अंत वायु के बाद कॉमा मत लगाना यानी उसका अर्थ होता है इंद्र भूति अग्नि भूति वायु भूति सिंह व्याल आदि वो तो तीरियंच लिए आदि में सब ले लिए देव तथा विद्याधर फिर देव ने सामान्य से देव लिए पहले इंद्र लिए थे सारे देवों के इंद्रों से लिए थे अब ये देव लिए इन जनरल देव व्याल नाम का एक प्राणी होता है आपने देखे होंगे जो सारे अजंता एलोरा है या कुंभोज में जो सब एक काष्ठ मंदिर है ना काष्ठातंका मंदिर वो ऐसा आकार होता है कुछ मैंने तो मुंह कुछ सिंह जैसा है और आप अंदर आकृति अलग होती है उसकी ऐसा हमेशा बहुत सारे उसके चित्र होते हैं या वो कमानी के ऊपर भी ऐसे आकार बताते वो व्याल है ये चाइनीज ड्रैगन जैसे बताते पर वो बहुत लंबा होता है इतना लंबा नहीं व्याल है देव तथा यानी ये देव करने से सामान्य देव हो गए अब विद्याधर मनुष्य ऋषि हाँ अरे विद्याधर तो मोक्ष भी जाते हैं ना तो मुनि हो गए ना उनके तो मुनियों में विद्याधरों में से जो मुनि बने वो भी हो गए और अभी वो कर्मभूमि के ही मनुष्य क्योंकि वो विजयार्ध पर्वत पर रहते हैं और उनकी विशिष्ट विद्याएं प्राप्त है बस इतना ही उसमें डिफरेंस है और तीर्यंचों के इंद्रों से पूजा के अतिशय को प्राप्त अतिशय पूजा का अतिशय ने विशेषता को प्राप्त श्री महावीर तीर्थंकर अर्थकर्ता समझना चाहिए निरक्षरी है ओमकार है मागध देव तो ये इसमें तो रूपांतर में निमित्त होते होंगे कुछ उसमें होंगे होती तो भाषा अपने आप ही उसकी दिव्य ध्वनि कहा ना उसको
मनुष्य की भाषा में देव को देव की भाषा में जो ट्रांसफर होता है
मगध देव के कारण से ये होता है, इसलिए उसको मगधी भाषा कहते हैं। फिर आपने यहाँ अर्ध मगधी आई, वो बात अलग है।
ये तो ग्रंथ रचना प्राकृत में हुई है, उसको शौर से नहीं प्राकृत ऐसे थे, जो ओरिजिनल जैन ग्रंथ है। अर्धमागधी तो बहुत बाद में हुई है, और ये अर्धमागधी ये श्वेतांबर ग्रंथ उनकी रचना उसमें हुई है खास। तो यानी मागधी और अन्य अपभ्रंश ऐसे इसको अर्धमागधी कहते हैं। तो मूल ये प्राकृत में जो ग्रंथ रचना है ये ओरिजिनल जो है शौर से नहीं प्राकृत कहते हैं। अरे कभी प्राकृत भाषा कहेंगे उसको, यानी वो मगध देश था ना, इसलिए वो मगधी कहते थे। वो भी प्राकृत में भी चार भेद वो बताते, वो आता है ना कुछ प्राकृत संबंधी कुछ मैगजीन, उसमें बहुत सारी विशेषताएं बताते हैं। ये प्राकृत में भी वो महाराष्ट्रीय अलग, उसके यानी चार अलग अलग उसके भी भेद बताए हैं, क्योंकि प्रांत वाइज जैसे हमारे भाषा के भेद होते हैं वैसे वहां पर भी भेद थे। तो यहाँ महावीर तीर्थंकर अर्थकर्ता समझना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ जो बलदेव नारायण वगैरह बताए हैं ना, यहाँ तो कोई बलदेव नारायण नहीं थे उनके जमाने में, महावीर के काल। चक्रवर्ती वो भी राजा थे, सैनिक राजा थे, यानी यथा गए तो इन जनरल तीर्थंकरों के कौन कौन होते हैं उनके पूजा करने वाले, ये बात बताइए। और हमारे लिए तो ये जो यहाँ हमारा जो उपदेश मिला है हमें, वो महावीर भगवान से मिला। हाँ, अब क्षेत्र विशिष्ट अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं। क्षेत्र विशिष्ट ने कौन से क्षेत्र में उन्होंने किया था, तो पंचशैलपुर में, ऊपर पढ़ना है पहले 52 नंबर। पंचशैलपुरे रम्ये विवुले पौवदुत्तमे नानादुम समाहिन्ने देवदानव वंदिते महावीरेण थो कहियो भवियलो यस्स। इतना ही है क्या? नहीं, वो एक ही अत्र उपयोगिनो श्लोको, वो 53-54 बाद में है। ये तीसरी ने महावीरेण थो कहियो भवियलो यस्स, एक ही लाइन है उसकी। ये उन्होंने स्वयं लिखी है, और बाद में उन्होंने उपयोगी श्लोक जो है वो बाद में बताए हैं। हाँ देखो, अभी हम यहाँ देखते हैं पंचशैलपुर में। पंचशैल यानी वो पांच पहाड़ी वाला राजगृह की बात है। पांच पहाड़ी अर्थात पांच पर्वतों से शोभायमान राजगृह नगर के पास, उसको पंचशैलपुर कहा।
राजगृह
रमणीक नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त, देव तथा दानवों से वंदित, और सर्व पर्वतों में उत्तम ऐसे विपुलाचल नाम के पर्वत के ऊपर भगवान महावीर ने भव्य जीवों को अर्थ का उपदेश दिया, अर्थात दिव्य ध्वनि के द्वारा जीवादि पदार्थों और मोक्ष मार्ग आदि का उपदेश दिया। इस विषय में दो उपयोगी श्लोक है। ऋषिगिरी इंद्राशायाम चतुरस्रो याम यदिशि च वै भारः विपुलगिरिर्नैरुत्याम उभौ त्रिकोणौ स्थितौ तत्र धनुकाकारश्चिन्नो वारुणवायव्यसौम्य दिक्षु ततः वृत्ताकृतिरैशान्यां पाण्डु सर्वे कुशाग्रवृत्ताः। वृत्ता इसका अर्थ देखते हैं। 53 नंबर, पूर्व दिशा में चौकोर आकार वाला ऋषिगिरी नाम का पर्वत है, ये पर्वतों के नाम बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वैभार और नैऋत्य दिशा में विपुलाचल नाम के पर्वत है, यानी वो उस राजगृह नगरी के पूर्व में ऋषिगिरी, दक्षिण में वैभार, नैऋत्य में विपुलाचल, ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकार वाले हैं। त्रिकोणों स्थितौ तत्र, हाँ ये दोनों वैभार और विपुलाचल, ये सेकंड नंबर में ये लिखा है देखो, चौरसो पूर्वाए, यानी पूर्वा है वो चतुरस है ना, यानी चौकोर है। ऋषि सेलो दाहिणाए वैभारो, ऋषि यानी चतुरस रो पूर्वाए ऋषि सेलो, मैं नीचे का पढ़ रही हूँ फुट नोट में सेकंड लाइन, यानी पूर्व दिशा में चौकोर आकार वाला ऋषिगिरी है ऋषि सेलो। नैऋदी दिशाएं विपुलो, नैऋत्य दिशा में विपुल है विपुलगिरी। दोन्नी तिकोण ठीदायारा, दाहिनाए वैभारो और नैऋदी दिशाएं विपुलो, समझ में है ना बात। पहला चौकोर है, दूसरा और तीसरा दक्षिण में वैभार और नैऋत्य में विपुलाचल, ये दो पर्वत त्रिकोण आकार के हैं। अब 54 नंबर का हम अर्थ देखते हैं। पश्चिम वायव्य और सौम्य दिशा में उत्तर होना चाहिए, तीन बताए ना अभी, दो ही बताने, छिन्न और पांडु। तो पश्चिम वायव्य और सौम्य दिशा में, यानी एक पूरा पर्वत पश्चिम में, वायव्य में और उत्तर में, ऐसा धनुषाकार। सौम्य का अर्थ उत्तर। धनुष के आकार वाला फैला हुआ छिन्न नाम का पर्वत है, ईशान दिशा में वृत्ताकार यानी गोल पांडु नाम का पर्वत है। ये सब पर्वत कुश के अग्र भागों से ढके हुए हैं। कुश यानी वो तृण घास गवत मराठी में। यह क्षेत्र परिच्छेद समझना चाहिए। नीचे तीन नंबर देखो फुटनोट में, धनुराकारश चंद्रो वारुण वायव्य साम दीक्षुत, हाँ वारुण वायव्य ने साम, वारुण है पश्चिम, वृताकृति ईशाने यानी ईशान दिशा में वृताकृति यानी गोलाकार पांडु हो, सर्वे कुशाग्र वृता, हाँ जो ऊपर बताए वैसा ही वहां ये जयधवला में बताया। अभी अपूर्व में बता रहे हैं नौ, अपूर्व नौ। अभी आगे जो तिलोय पन्नति का ये बता रहे सेकंड लाइन, तीन नंबर में सेकंड लाइन, चाव सरिच्छो छिन्नो, चाव चाप यानी धनुष, चाप सदृश छिन्नो, छिन्न है उसका नाम है छिन्न पर्वत। वरुणा नील सोम दिश विभागेशु, वरुण अनिल और सोम दिशा यानी वो पश्चिम वायव्य और उत्तर दिशा। ईशानाए पंडुव वट्टो, वो तने वृत्ताकार है, ईशान दिशा में पांडु पर्वत है वो वृत्ताकार है। सौवे कुसग परियरणा, यही कुशाग्र वृत्ता लिखा है ना, वही बात है। अब हरिवंश पुराण में लिखा है तीसरी फुटनोट की तीसरी लाइन, ऋषि पूर्वो गिरीश तत्र चतुरस्र सनिर्जरा, यानी पूर्व दिशा में ऋषि नाम की बार का पर्वत है, चतुरस्र चौकोर है और सनिर्जरा है, निर्जर है पानी के झरने होते हुए उसमें। दिग्गजेंद्र युव इंद्रस्य ककुंभम ककुभम भूषयत्यलम, दिग्गजेंद्र इव इंद्रस्य ककुभम भूषयत्यलम, उसी का वर्णन है यहाँ पर। वैभारो दक्षिणाम आशाम त्रिकोणाकृतिराश्रितः, दक्षिण दिशा में वैभार पर्वत है, दक्षिणा पर दिंग मध्यम विपुलश्च तदाकृति है, और नैरुत दिशा है ना, दक्षिणा अपर दिक वहां विपुल पर्वत है, तदाकृति उसी आकृति वाला त्रिकोण वाला। सज्ज चापाकृति तीसरो दिशो व्याप्य बलाहक, यानी चापाकृति यानी धनुषाकृति, तीसरो दिशा ने तीनों दिशाओं में व्याप्य बलाहक, उसका नाम क्या है, चिन्ह है ना वो बलाहक कहा। शोभते पांडुको वृत्त पूर्वोत्तर दिगंतरे, पूर्व उत्तर के दिशा का अंतर यानी वो ईशान्य दिशा, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर दिगंतर, ये हो गया। अब काल की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं। इस अवसर्पणी कल्प काल के दुष्मा सुषमा नाम के चौथे काल के पिछले भाग में कुछ कम 34 वर्ष बाकी रहने पर, यानी जब उनको केवल ज्ञान हुआ उनकी वाणी छूटी तब की बात है, वर्ष के प्रथम मास अर्थात श्रावण मास में प्रथम पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष में, क्योंकि उनका तो कृष्ण पक्ष से मास चालू हो जाता है, प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय आकाश में अभिजित नक्षत्र के उदित रहने पर तीर्थ अर्थात धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई। ये युग का प्रारंभ होता है ना, पांच पांच साल में हमने देखा था, अभिजित नक्षत्र होता है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, अभी त्रिलोकसार में हुई ना बात अपनी, अभ्यंतर गली में है चंद्र भी और सूर्य भी। आप नहीं थे, आते थे हाँ? हाँ? नहीं पूर्णिमा
नहीं, गली तो मालूम है पर ये मैं पूरी अंदर की गली देखा।
देखो अब अंदर है तभी तो पूर्णिमा, तभी तो उसके नेक्स्ट डे श्रावण कृष्ण प्रतिपदा चालू हो जाएगी ना, शुरू हो गया। अभिजीत नक्षत्र होता है पहले गली में, तो अभिजीत नक्षत्र पर है, अरे सूर्य का भी वो प्रारंभ हो गया, उसका दक्षिणायन प्रारंभ हुआ ना मेरे ख्याल से,
दक्षिणायन
प्रारंभ हुआ है। धर्म अर्थात धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई, हम उसको आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा कहते हैं, ये हिंदी में श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, और वही ये सही है आगम परंपरा के अनुसार उसी को बताया। ये 56 नंबर को पढ़ेंगे, 56 तो हमने, अच्छा हमने 55 पढ़ा था,
नहीं पढ़ा,
नहीं शुक्ल पक्ष दोनों समान, कथन की में डिफरेंस है, दोनों का शुक्ल पक्ष में कथन समान है। हम चैत्र महीने से शुरुआत करते हैं, हम पहले क्या करें, साल की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुई, 15 दिन के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा आ गई, ये हम मराठी गुजराती कहते हैं, अब हिंदी भाषिक चैत्र कृष्ण प्रतिपदा उनकी फाल्गुन कृष्ण में जब हम कहते तभी हो गए उनके, यानी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष पहले आता है और बाद में शुक्ल पक्ष। जब हम चैत्र कृष्ण प्रतिपदा कहते हैं तो वो वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के कहने में डिफरेंस है। देखो और हम चैत्र चैत्र कहेंगे जयंती नहीं निर्वाण अश्विन अमावस्या कहेंगे, वो कार्तिक अमावस्या कहेंगे। चल में नहीं अभी हम ये 55 नंबर का पढ़ना रह गया था ना लास्ट पेज पर, 63 पेज पर पढ़ेंगे, हमने उसका अर्थ ऑलरेडी पढ़ लिया है अभी तो पढ़ा ना,
पढ़ा ही
अभी हम 64 पेज पर गए थे पढ़ते पढ़ते, अभी तो हुआ ना अवसर पीने के दुष्मा सुषमा वगैरह उसकी बात पढ़ी थी। इमिसे वसपिनी चौथ समयस्य पश्चिमे भाए चौतीस वास से किंचि विशेषुनये संते, यानी ये जो चौथे काल में 34 साल बाकी है थोड़े 34 और कुछ 34 वर्ष बाकी रहने पर अभी उसका आधा अभी 56 भी पढ़ लेना यहाँ पर। वासस्य पढ़म मासे पढ़मे पक्खम मिसावणे बहुले पाड़िवद पूव दिवसे तिथुपत्ति दु अभिजिम्मी, मैंने अभिजीत नक्षत्र पर अभी उसका अर्थ अभी हमने देखा आपको याद रहे ना, अभी अभिजीत नक्षत्र ने पढ़ा था इसको। अब 57 को पढ़ना है, सावन बहुल पड़िवदे वृद्ध मुहूर्ते सुहोदय रविनो अभिजिस पढ़म जोए एथ जुगाई मुने यौवो। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन रुद्र मुहूर्त में सूर्य का शुभ उदय होने पर और अभिजित नक्षत्र के प्रथम योग में जब युग की आदि हुई, युग किसको कहते हैं, ये 5-5 साल में युग होता है ना, वो युग की आदि कहते हैं, तब तीर्थ की उत्पत्ति समझना चाहिए, यह काल परिच्छेद हुआ। अभी त्रिलोक सार में उसकी बहुत चर्चा आई थी ना, युग यानी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को अभिजित नक्षत्र पर है, ये तो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा हम चंद्र की अपेक्षा बताएंगे और सूर्य की अपेक्षा भी वो आयन चालू हो गया नया, तो उसकी अपेक्षा से दोनों की पोजीशन बताई। अब यही पोजीशन 5 साल के बाद रिपीट होगी क्योंकि बीच में जब सूर्य फिर दक्षिणायन उत्तरायण करता रहेगा, क्योंकि 6-6 महीने में होता है ना उसका, 6 महीने में अभी दक्षिणायन चालू हो गया, फिर उत्तरायण होगा, फिर दक्षिणायन चालू हो जाएगा, तो उसके लिए यानी साल भर के अंतर में तब चंद्र की पोजीशन अलग होगी, यानी तब उसकी तिथि अलग होगी। हमने देखा था उसमें कुछ 10-10 दिन को हो जाते, कितने दिन का 10 या 12 15 नहीं होते, 12 दिन का होता है ना, 12 दिन का है। अभी कृष्ण प्रतिपदा है ना, वो तो इसमें 5 साल में 2 अधिक मास आ जाते, 12-5-7 अभी आगे बढ़ते हैं। यह काल परिच्छेद हुआ, उन्होंने क्या बोला था कि ये ग्रंथ अर्थकर्ता मूल जो है वो कौन है, तो द्रव्य की अपेक्षा महावीर भगवान को बोला, क्षेत्र की अपेक्षा विपुलाचल पर्वत बताया, काल की अपेक्षा उन्होंने बताया जब उनकी दिव्य ध्वनि पहली बार शुरू हुई उस दिन की बात की, केवल ज्ञान की बात नहीं की, 66 दिन के बाद जब दिव्य ध्वनि खिरी तब की बात की। हाँ परंतु तभी हाँ चौथा काल समाप्त होने के लिए 34 साल बाकी, यानी निर्वाण के बाद कुछ 3 साल और कुछ बाकी थे ना, तो
तो पांचवा काल के प्रश्न
64 नंबर पेज आपकी क्या प्रश्न है आपका, उसमें बोलना आप, उसके अंदर बोलना।
मेरा ये प्रश्न है,
हाँ,
पेज 64 में फर्स्ट लाइन में ऐसा लिखा है, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा के दिन,
उसके पहले श्रावण मास में प्रथम पक्ष, हाँ,
श्रावण महीना,
हाँ,
सेकंड लाइन में धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई। अभी 57 नंबर के श्लोक के शुरुआत में श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन,
हाँ,
और यहाँ क्या लिखा है कृष्ण,
वही तो बताया ना, श्रावण कृष्ण यानी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, उसी को श्रावण महीने के पहले पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में। आपका प्रश्न नहीं ख्याल में है,
प्रश्न है कि दो जगह अलग अलग डेट बताए,
कहाँ बताए अलग, वही तो है ना,
श्रावण मास में,
हाँ,
प्रथम पक्ष
कृष्ण
पक्ष में धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई
प्रथम दिन में, वही तो,
हाँ, और नीचे क्या लिखा है श्रावण कृष्ण
प्रतिपदा, वही तो है ना, कृष्ण पक्ष का पहला दिन यानी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा।
मेरी गलती हुई,
हाँ,
मैं ये समझा कि यहाँ शुक्ल की बात कर रहे
हैं,
नहीं, कृष्ण की है,
वो कृष्ण पक्ष को ही प्रथम पक्ष,
बरोबर बरोबर, उनका कहना बराबर है, मेरे समझ में घोटाला,
कोई बात नहीं।
कभी युग का प्रारंभ नहीं होता है, यहाँ पे 34 साल रहने पर युग का प्रारंभ हुआ,
युग है ना, वो युग नहीं लेना है, पांचवा काल चौथा काल उस युग की बात नहीं है,
हाँ। पर अभी जो ये 5-5 साल का जो युग बता रहे हैं,
हाँ,
तो ये पांचवा काल शुरू हुआ तभी प्रथम समय में युग का प्रारंभ नहीं हुआ,
चतुर्थ काल शुरू हुआ था तभी हुआ था,
हाँ,
वो युग के प्रारंभ में होता है,
हाँ, नहीं अभी 34 साल
काल का परिवर्तन होता है ना, कृष्ण प्रतिपदा को, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को,
अभी यहाँ पे बताया 34 साल बाकी रहने पर, जब चौथे काल का 34 इयर्स बाकी था तभी युग का प्रारंभ,
युग यानी वो 5-5 साल का युग कहते,
हाँ,
वो,
हाँ, बराबर है, तो 34 साल का, 34 साल का समय था, नहीं
उसको युग नहीं कहा, पंचम काल के शुरुआत को युग नहीं कहा है,
युग प्रारंभ
पंचम काल के लिए नहीं कहा, चतुर्थ काल की आदि हुई तब कहा, ये तो महावीर भगवान के, हाँ, अभी आगे देखते हैं, भाव की अपेक्षा अर्थकर्ता का निरूपण करते हैं, पहले 57 नंबर हो गया ना अपना, ऊपर पढ़ लिया, अब भाव की अपेक्षा के लिए कोई गाथा नहीं है, डायरेक्ट पढ़ेंगे, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के, यहाँ 8 तो हमने निकाल दिया था क्योंकि ऊपर केवल ज्ञानावरणादि निश्चय व्यवहार अपाय, ठीक है, हम केवल ऊपर का नहीं, उसका समझाने के लिए उन्होंने ज्ञानावरणादि 8 लिखे हैं,
4 करके हमने 4 लिखे,
नहीं 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 8 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि महावीर भगवान की बात चल रही है ना यहाँ पर, नव केवल लब्धि प्राप्त हुई है तब की बात है, उनको महावीर भगवान जो है, जब उनको महावीर भगवान कह रहे अरिहंत अवस्था है तो 8 नहीं लेना है, मूल में केवल ज्ञानावरणादि इतना ही लिखा था, ऊपर प्राकृत में, हाँ, वो 8 नहीं चाहिए, 4 चाहिए,
हमने 4 किया था,
हाँ, हमने केवल उसको निकाल दिया क्योंकि ओरिजिनल में वो 4 या 8 की बात ही नहीं थी, ज्ञानावरणादि था ना, तो ज्ञानावरणादि कर्मों के यानी ज्ञानावरण दर्शन मुनि अंतराय निश्चय व्यवहार रूप विनाश कारणों की विशेषता से उत्पन्न हुए, अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य तथा क्षायिक सम्यक दान लाभ भोग और उपभोग की निश्चय व्यवहार रूप प्राप्ति के अतिशय से प्राप्त हुई, क्या कहते हैं ये, क्या प्राप्त हुए, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, क्षायिक सम्यक, क्षायिक दान, लाभ, भोग, वो इनको क्षायिक शब्द लगाया, बाकी को अनंत शब्द लगाया। तो ये नौ जो प्राप्त हुए, तो ये निश्चय व्यवहार रूप प्राप्ति हुई, और उसके लिए कारण क्या बताया? निश्चय व्यवहार रूप विनाश कारण, यानी निश्चय व्यवहार कारणों से इसकी भी निश्चय व्यवहार रूप प्राप्ति हुई, ये कह रहे हैं। देखो यहाँ क्या कहा है, ज्ञानावरणादि कर्मों के क्या हुआ, उनके विनाश हुआ। ये तो ये हम निश्चय व्यवहार कारण लगा रहे हैं उसमें। देखो देखो फिर से
ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के निश्चय व्यवहार रूप विनाश। अब यहाँ कर्मों का नाश हुआ और यहाँ अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई,
ये कारणों के लिए निश्चय व्यवहार, निश्चय कारण और व्यवहार कारण ऐसा लिया।
हाँ,
निश्चय और व्यवहार कारण लिए, वो पूरे जो शुक्ल ध्यान किया क्या क्या वो सब उसमें निश्चय व्यवहार सब लगाएंगे।
निश्चय व्यवहार
कारणों की विशेषता से
निश्चय व्यवहार रूप विनाश,
कारणों में निश्चय कारण व्यवहार कारण लिए। जैसे हम जो निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, पूरे श्रेणी चढ़ी वगैरह वो सब ले लेना उसमें, तो उसमें अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख वगैरह ये सारे प्राप्त हुए।
जो प्राप्त हुए उसमें निश्चय लगाना है, और
निश्चय व्यवहार प्राप्ति के अतिशय से प्राप्त हुई, ये नव केवल लब्धि से परिणत हुए भगवान। देखो आगे क्या लिखा है, पूरा वाक्य पढ़ते हैं। अतिशय प्राप्त हुई नव केवल लब्धियों से परिणत, भगवान महावीर ने भाव शुद्ध का उपदेश दिया। यह तो वह है अर्थात के आगे क्या लिखा, अर्थात निश्चय और व्यवहार से अभेद भेद रूप नव लब्धियों से युक्त भगवान महावीर ने भाव शुद्ध का उपदेश दिया। अभेद रूप उसको कहेंगे सबको तो हो गया निश्चय, उसी में भेद करेंगे नव का तो यह हो गया व्यवहार। हम अपने ज्ञान में जान रहे हैं ना, वो उनके कुछ निश्चय व्यवहार होता है, ऐसे नहीं लेना उसमें। हम अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा उनका वर्णन देख रहे हैं तो उसमें भी निश्चय व्यवहार लगेंगे, अभेद को निश्चय कहेंगे, भेद को व्यवहार कहेंगे, वो व्यवहार होगा। अभेद वो सारे अभेद रूप से परिणत है तो वो तो निश्चय हो गया। यानी भगवान महावीर ने यहाँ उपदेश दिया है, कहा भी है 58 दाने लाभे भोगे परिभोगे वीरिये ये सम्मत्ते न केवल लद्दियो दंशन नाणम चरितेय। नीचे अर्थ है दान, लाभ, भोग, परिभोग, वीर्य, सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये नव केवल लब्धियां हैं। ये एक आंकड़ा लिखा है ना, ब प्रतौ गाथे यम गाथा यम नास्ति, यह गाथा नहीं है, कैसे कहा भी है नहीं। आगे 59 पढ़ेंगे, क्षीणे दंशन मोहे चरित मोहे तहे व घायतिये सम्मत्त वीर्यणाणं कैयायं होन्ति केवलिनो। अर्थ देखते हैं, क्षीणे दंशन मोह, यानी दर्शन मोह के क्षीण होने पर, चरित्त मोहे तहेव उसी प्रकार चारित्र मोह के क्षीण होने पर, और घायती यानी घातित्रिक, यानी उसका अर्थ किया दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के क्षय होने पर, तथा शेष तीन घातिया कर्मों के क्षय हो जाने पर, इसलिए अलग अलग बताए उसको, एक साथ सबको नहीं कहा, क्योंकि शायिक समय दर्शन होगा, बाद में श्रेणी चढ़ेगा, बाद में चारित्र मोह का क्षय करते हुए वो कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके 12वें के अंत में तीन घाती कर्मों का क्षय हो जाता होने पर, केवली जिन के सम्यक्त्व वीर्य और ज्ञान ये एक शायिक भाव प्रकट होते हैं। यानी दर्शन मुनि के शीलोक्षय होने पर शायिक सम्यक्त्व होता है और बाकी जो है वो तीन घाते शायिक भाव प्रकट होते हैं। ऐसे उसमें उन्होंने दर्शन को नहीं लिया है, शायिक दर्शन भी है। यानी सभी ले लेना उसमें 60 नंबर। उपन्नम्यणन्ते नट्ठम् यच्छादुमत्येनाने नवविहपयत्थ गब्धा दिव्यच्छुणी कहे सुत्तट्ठम्। शायोक्षमिक ज्ञान के नष्ट हो जाने पर नठम्य छादुमत्थिये नाणे और अनंत रूप केवल ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर उपन्नम्य अनंते नव प्रकार के पदार्थों से गर्भित नव विह पयत्थ गब्भा दिव्य ध्वनि सूत्रार्थ का प्रतिपादन करती है। कहे ही सुतट्ठम, देखो नौ प्रकार के पदार्थ है ना, 7 तत्व पुण्य पाप मिलकर 9 पदार्थ कहते हैं, तो दिव्य ध्वनि में उसका पूरा ही वर्णन आता है, इसलिए सूत्रार्थ का प्रतिपादन करती है। अर्थात केवल ज्ञान हो जाने पर भगवान की दिव्य ध्वनि खेती है। भाव की अपेक्षा अर्थकर्ता बता रहे थे उसकी बात हो रही है, यानी उनके कौन से भाव है, तो शायिक भाव प्रकट हो गए, नौक्षायिक भाव, उन भावों की चर्चा हम ऐसे भाव में उनके भावों की चर्चा करते हैं। इस प्रकार भगवान महावीर अर्थ करता है, इस प्रकार केवल ज्ञान से विभूषित उन भगवान महावीर के द्वारा कहे गए अर्थ को उसी काल में और उसी क्षेत्र में क्षयोपशम विशेष से उत्पन्न हुए 4 प्रकार के निर्मल ज्ञान से युक्त वर्ण से ब्राह्मण गौतम गोत्री संपूर्ण दुश्रुति में पारंगत और जीव अजीव विषयक संदेह को दूर करने के लिए श्री वर्धमान के पाद मूल में उपस्थित हुए ऐसे इंद्रभूति ने अवधारण किया। देखो ये नीचे फुटनोट में जरा पढ़ेंगे आगे पेज पलटने के पहले, बाकी ऊपर तो 4-5 नंबर देखते हैं। महावीर भासी अथो तस्सिम खेतम मि तत्थ कालेय हायोम स्व विवड्ढ विवड्ढद चौरमल महिम पुण्येनम लोया लोयान तहा जीवा जीवान विविह विषयेषु संदेह नाशनत्थम इन्हें संदेह का नाश करने के लिए उवगद सिरिवीर चलन मूलेन विमले गोदम गोत्ते जादेनम इंद भूदि नामेनम चौ वेद पारगेनम 4 वेदों में पारंगत थे वे शिष्येन विशुद्धि विशुद्ध शीलेन। नीचे लिखते 6 नंबर पर देखो मिथ्या दृष्टि अवस्थायाम इंद्रभूति ही सकल वेद वेदांग पारग सन अपि जीवास्तित्व विषये संदिग्ध एव आसीत। उसके बारे में अभी उसको संशय था, संदिग्ध था, उसमें कोई नॉलेज नहीं था। ये आगे चल रहा है उसका, अभी फुटनोट ही पढ़ना है ना नेक्स्ट की। प्रश्नानंतरम समवसरणम समभ्येत्य प्रवृज्य च, यानी वो प्रश्न के बाद में समवसरण में आ गए वगैरह वगैरह। प्रवृज्य च श्री वर्धमान स्वामिनम प्रप्रच्छ किम जीवो अस्ति नास्ति वा किम गुण कियान किद्रूप, यानी फिर प्रवृज्य ने दीक्षा ली, फिर वो सब वो स्टोरी उसमें समझ लेना। और वर्धमान स्वामी से पूछा जीव क्या है, अस्थि क्या है, नास्ति क्या है, क्या गुण है, कैसे है। तदा जीवो अस्थि अनादि निधना शुभ अशुभ विभेद कर्मणाम करता, यानी जीव अनादि निधन है, शुभाशुभ भेद से कर्म का करता है इत्यादि अनेक भेद ही तथा सजीवादि वस्तु सद्भावम दिव्य ध्वनिना स्फुटम इंद्रभूतये सन्मति रवोचत। आगे लिखते हैं, ये इंद्रभूति श्रुतावता की बात है। देवै ही क्रियमाणाम समवसरण लक्षणाम महिमाम दृष्ट्वा अमर्षितः सन् इंद्रभूतिर् भणति भोभो ब्राह्मण वराः माम मुक्त्वा किमेष नगर लोकस्तस्य कस्यचित् पादमूलं धावति ननु महत् कुतूहलं कथयत् अत्र निबंधनम् इति महाप्रलय मेघ इव गर्जित्वा समवसरणं प्रविष्टो वादार्थम्। ये समझ में आ रहा है कुछ? इंद्रभूति ऐसा कहते हैं, मुझे छोड़कर किम एष नगर लोकस्तस्य कस्यचित् पादमूलं धावति, मुझे छोड़कर ये सारे जो किसके पादमूल में भाग रहे हैं। ननु महत् कुतूहलं कथयत्। ये इंद्रभूति कह रहे हैं और महाप्रलय मेघ इव गर्जित्वा, महाप्रलय मेघ के समान गर्जना करके कह रहा है इंद्रभूति। जब समोष सन इंद्रभूति भवति, देखो फिर से पढ़ते, देवै ही क्रियमाणाम समोषरण लक्षणाम महिमाम दृष्ट्वा, देवों ने बनाए हुए समोषरण की महिमा देखकर अमर्षितः सन इंद्रभूतिर बनती। अमर्षित का अर्थ नहीं ख्याल में आया, तो वो अन्य ब्राह्मणों को बताया, ये ब्राह्मणों श्रेष्ठों मुझे छोड़कर किम एष नागर लोक, ये सब सारे जो गांव के लोग हैं किसके पादमूल में भाग रहे हैं। यहाँ कौन सा मूड में बड़ा कुतूहल हो रहा है, ऐसे उसने प्रलय के मेघ समान गर्जना की। महाप्रलय मेघ इव गर्जित्वा समोशरणम प्रविष्टो वादार्थम, वाद करने के लिए समोशरण में प्रवेश किया। वो बोला है ना, वो तो उसी स्टोरी छोड़ दिए, उस मेन बात बताई है कि वो कौन, ये क्यों सब भाग रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, मुझे छोड़कर मैं इतना बड़ा हूँ, तो इसलिए वो मेघ समान गर्जना करता हुआ समोषण में प्रवेश किया उसने। परम च तत्र श्री वीरम दृष्ट्वा हतप्रभैव ससंकितः सन् पुरतः स्थितः, परंतु वहां श्री भगवान को देखकर, महावीर भगवान को देखकर हतप्रभ कहते हैं जैसे हदबल हो गया, गलित गात्र कहते हैं, वह ससंकितः सन् पुरतन परिपूर्ण यानी वो स्थित हो गया। तदा भगवता वीरेण अभाषितः किम मन्ने अत्थि जीवो उयाहुन अत्थित्ति संसो तुझ वेय पयान अर्थम न यानसी तेमिसो अर्थो ततश्च निःसंशया सन् असौ प्रव्रजितः। ये पता नहीं है क्या लिखा, किम मन्ने अत्थि जीवो उयाहुन अत्थि संशो तुझ, यानी तब निसंशय होकर वो प्रव्रजित है, इन्हें दीक्षा धारण की। अब ऊपर पढ़ेंगे 61 नंबर को, गोत्तेन गोदमो विप्पो चाउ वेय सड़ंगवी नामेन इंदभूति ती सीलवं ब्रह्मण उत्तमो। गोत्तेन गोदम, गौतम गोत्र का था ना वो, गौतम गोत्री विप्पो विप्रवर्णी, विप्र कहते ना, विप्र ने ब्राह्मण को कहते हैं, विप्रवर्णी वर्णी यानी चार वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें से ब्राह्मण वर्ण वाला था। चाहु वेय सड़ंगवी, चारों वेद और षडंग विद्या का पारगामी, शीलवान और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऐसा वर्धमान स्वामी का प्रथम गणधर इंद्रभूति इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चार वेद है ना उनके, ऋग्वेद सामवेद वगैरह सब। हाँ, उनके षड अंग कोई होगी उनके। अब आगे पढ़ेंगे हम। अनंतर भावशुत रूप पर्याय से परिणत उस इंद्रभूति ने 12 अंग और 14 पूर्व रूप ग्रंथों की एक ही मुहूर्त में क्रम से रचना की। 12वें अंग में ही 14 पूर्व। एक ही मुहूर्त में कर दिया। इसके लिए क्या लिखा नीचे, दो नंबर तिलोय पन्नति का यही गाथा है, वही उन्होंने उद्धृत की है। अभी हम आगे का वाक्य पढ़ते हैं। अतः भावश्रुत और अर्थ पदों के कर्ता तीर्थंकर है। पहले अर्थ कर्ता बताए थे ना, कर्ता के भी दो भेद बताए, अर्थ कर्ता और ग्रंथ कर्ता। अब अर्थ कर्ता महावीर भगवान को कहा और इनको अर्थ पदों के कर्ता कहा। पदों की रचना की ना उन्होंने, इसलिए भावश्रुत के और अर्थ पदों के कर्ता, सॉरी भावश्रुत और अर्थ पदों के कर्ता तीर्थंकर है। और तथा तीर्थंकर के निमित्त से गौतम गणधर श्रुत पर्याय से परिणत हुए, इसलिए द्रव्य श्रुत के कर्ता गौतम गणधर है। भावश्रुत और अर्थ पदों के कर्ता तीर्थंकर को कहा और उनके निमित्त से द्रव्य श्रुत के कर्ता गौतम गंधर। इस तरह गौतम गंधर से ग्रंथ रचना हुई। उन गौतम गंधर ने भी दोनों प्रकार का श्रुत ज्ञान लोहार्य को दिया। ये श्रुत केवली हुए थे ना, लोहार्य ने भी जम्बू स्वामी को दिया। परिपाटी क्रम से ये तीनों ही सकल श्रुत के धारण करने वाले कहे गए हैं। वैसे अन्य भी श्रुत केवली हुए थे, परंतु ये कौन किसका शिष्य है वो बताने के लिए बता रहे। और यदि परिपाटी क्रम की अपेक्षा न की जाए, उस समय संख्यात हजार सकल श्रुत के धारी हुए। क्या कहा, कितने हुए?
संख्यात हजार
सकल श्रुत के, यानी वो द्वादशांग के श्रुत केवली जिसको कहेंगे। ये लोहारे वगैरह वो तो पंचम काल में जो हुए थे पांच श्रुत केवली, उनमें से अनुबद्ध अलग। अनुबद्ध ने वो जिस समय वो मोक्ष गए उसी समय जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया उसकी बात है। अनुबद्ध केवली अर्थ अलग है। अनुबद्ध ने जिस समय महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया उसी समय इनको केवल ज्ञान हुआ। इनको जब निर्वाण हुआ तब उनको केवल ज्ञान हुआ। ये अनुबद्ध केवली।
ये काल अभी 34 काल का।
लोहार्य को ही खेते क्या सुधर्मा जम्बू स्वामी लास्ट में।
ये 34 काल का
पर ये परिपाटी क्रम की अपेक्षा न की जाए। परिपाटी नहीं, इसके बाद ये और इसके बाद ये, इसको परिपाटी कहा।
यहाँ पे संख्या तजार बताया, अभी 34 वर्ष का समय बाकी है चौथे काल में, तो संख्या तजार श्रुत केवली हो सकते हैं।
क्यों नहीं, श्रुत केवली हुए और उसमें से चौथे काल में कितने मोक्ष भी गए होंगे और बाद में भी जा सकते हैं। क्योंकि जन्मे तभी के है, तभी के जन्मे हुए वो जाएंगे, वो चौथे काल के कहलाएंगे, समझ में ना। और ये भी जो बाद में जो मोक्ष गए वो जन्मे थे चौथे काल में, ये अनुबद्ध कैवली अनुबद्ध है ना, जिस समय सांकल जिसको कहे ना, एक निर्वाण ये दूसरे केवल ज्ञान हुआ, इसका निर्वाण हुआ उनके केवल ज्ञान हुआ, इस प्रकार से
तो गौतम गणधर सुधर्माचार्य और जम्बू,
हाँ जम्बू स्वामी, इसलिए उनको तीनों का नाम, इसको परिपाटी कहा। ये बता रहे अभी उसके पूरी तो देखो, परिपाटी की अपेक्षा नहीं करेंगे तो संख्यात हजार सकल शुद्ध के धारी हुए। अब 67 पेज पर आते हैं। गौतम यदि परिपाटी क्रम की अपेक्षा न की जाए, परिपाटी यानी उनके बाद ये उनके ही शिष्य, इनका ये शिष्य इनके ये शिष्य इसे परिपाटी ली, उसकी अगर अपेक्षा नहीं करेंगे तो की बात है। देखो पहले भी आए होगा ना, ये जो वहां 18 नंबर पर दिया वही अभी यहां मूल में आ रहे 67 पेज पर। अठारह नंबर प्रस्तावना में वो यहीं से वहां पर लिखा है, यही बात अभी आने वाली है। उन्होंने एक प्रस्तावना का 18 नंबर का पेज वहां डायरेक्ट उन्होंने एक चार जैसा बनाया। देखो महावीर की शिष्य परंपरा बताएं, गौतम लोहारी और जम्बू तीन केवली, फिर विष्णु नंदीमित्र अपराजित गोवर्धन भद्रबाहु पांच श्रुत केवली, ये दशपूर्वी वाले 11 हुए, विशाखाचार्य प्रोष्ठिल क्षत्रिय जय नाग सिद्धार्थ ऋतिसेन विजय बुद्धिल गंगदेव और धर्मसेन, ये सब 11 जो है वो 10 पूर्वी के हुए। और 11 अंग के धारी वो नक्षत्र जयपाल पांडु ध्रुवसेन और कंस, आचार अंग के धारी एकादश अंग धारी यानी 11 अंग के धारी, 11 अंग धारी आचार अंग के धारी चार हुए, सुभद्र यशोभद्र यशोबाहु लोहारी, ये लोहारी है यहाँ पर। अभी यही बात अभी आगे यहाँ बता रहे अपने 67 पेज पर, दशपूर्वी करते 11 अंग और 12वें अंग में से 10 पूर्वों का ज्ञान वाले, यानी 12 अंग स्थाई था और इन एडिशन 10 पूर्व, 10 पूर्वी कहते तब आगे ये नहीं, वो तो पहले वाला है ही, जैसे हम एमए कहते तो उसमें सारे वो मैट्रिक पास है कि नहीं, वो तो बीए पास है कि नहीं, उन्नीस में प्रस्तावना के नाम भेद है, लोहारिया का ही दूसरा नाम सुधर्मता, वो ऊपर से तीसरे पैराग्राफ के लास्ट में उसके लिए वो, हाँ वो वही बात अभी यहाँ आने वाली. सुधर्मा स्वामी उन्हीं को कहा. अब हम 67 पेज पर पढ़ने जा रहे हैं. गौतम स्थविर लोहाचार्य और जम्बू स्वामी ये तीनों ही 7 प्रकार की रिद्धियों से युक्त और सकल शुतरूपी सागर के पारगामी होकर अंत में केवल ज्ञान को उत्पन्न कर निर्वाण को प्राप्त हुए. इसके बाद विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से यानी आचार्य परिपाटी क्रम से 14 पूर्व के धारी हुए. ये परिपाटी क्रम यानी कौन कौन से किसके शिष्य उसकी वो परिपाटी कहा. एक साथ बहुत सारे भी अन्य होते हुए तो ये परिपाटी की बात बता रहे, परंपरा बता रहे. तदनंतर विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थ स्थविर, धृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन ये 11 ही महापुरुष परिपाटी क्रम से 11 अंग और उत्पाद पूर्व आदि दश पूर्वों के धारक तथा शेष उपरिम 4 पूर्वों के एक देश के धारक हुए. यानी 11 अंग के पूर्व पूर्ण ज्ञान था, 10 पूर्वों का भी था और 14 में से 10 का तो पूरा ज्ञान था और जो अन्य जो 4 है उसका एक देश अंग, एक देश ज्ञान था. इसके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पांडुस्वामी, ध्रुवसेन, कंसाचार्य ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से संपूर्ण 11 अंगों के और 14 पूर्वों के एक देश के धारक हुए. यानी 14 पूर्वों हर एक पूर्व में से थोड़ा थोड़ा ज्ञान था उनको. तदनंतर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चारों ही आचार्य संपूर्ण आचारांग के धारक और शेष अंग तथा पूर्वों के एक देश के धारक हुए. यानी आचार्य अंग का पूर्ण ज्ञान और बाकी जो अंग और पूर्व है उनका एक देश ज्ञान. इसके बाद सभी अंग और पूर्वों का एक देश आचार्य परंपरा से आता हुआ धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ. एक देश था, इन्हें सभी अंगों के और पूर्वों का एक देश ज्ञान था. सगळ्यांचा एक देश ज्ञान था उनको सभी अंगों पूर्वों का. अब हम आते हैं पेज नंबर 68 पर. सौराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ देश के गिरिनगर नाम के नगर की चंद्र गुफा में रहने वाले अष्टांग महानिमित्त के पारगामी प्रवचन वत्सल और आगे अंगशत का विच्छेद हो जाएगा, इस प्रकार उत्पन्न हो गया है भय जिनको। ऐसे उन धर्षणाचार्य ने महामहिमा अर्थात पंचवर्षीय साधु सम्मेलन में सम्मिलित हुए दक्षिणापथ के यानी दक्षिण देश के निवासी आचार्यों के पास एक लेख भेजा। लेख में लिखे गए धर्षणाचार्य के वचनों को भली भांति समझकर उन आचार्यों ने शास्त्र के अर्थ को ग्रहण और धारण करने में समर्थ नाना प्रकार की उज्ज्वल और निर्मल विनय से विभूषित अंग वाले शील रूपी माला के धारक गुरुओं द्वारा प्रेषण रूपी यानी भेजने रूपी भोजन से तृप्त हुए, यानी गुरु ने उनको भेजा इसीलिए वो तृप्त हो गए। देश कुल और जाति से शुद्ध अर्थात उत्तम देश उत्तम कुल और उत्तम जाति में उत्पन्न हुए, समस्त कलाओं में पारंगत और तीन बार पूछा है आचार्यों से जिन्होंने यानी आचार्यों से तीन बार आज्ञा लेकर ऐसे दो साधुओं को आंध्र देश में बहने वाली वेणा नदी के तट से भेजा। यानी वहां उनका वो सम्मेलन हुआ होगा, वहां से उनको भेज दिया। मार्ग में उन दोनों साधुओं के आते समय जो कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान सफेद वर्ण वाले हैं, जो समस्त लक्षणों से परिपूर्ण हैं, जिन्होंने आचार्य धर्षण की तीन प्रदक्षिणा दी है और जिनके अंग नमृत होकर आचार्य के चरणों में पड़ गए हैं, ऐसे दो बैलों को धर्षण भट्टारक ने रात्रि के पिछले भाग में स्वप्न में देखा। इस प्रकार के स्वप्न को देखकर संतुष्ट हुए धर्षणाचार्य ने श्रुत देवता जयवंत हो ऐसा वाक्य उच्चारण किया। उसी दिन दक्षिणापथ से भेजे हुए वे दोनों साधु धर्षणाचार्य को प्राप्त हुए। उसके बाद धर्षणाचार्य की पादवंदना आदि कृतिकर्म करके और दो दिन बिताकर तीसरे दिन उन दोनों ने धर्षणाचार्य से निवेदन किया कि इस कार्य से हम दोनों आपके पादमूल को प्राप्त हुए हैं। उन दोनों साधुओं के इस प्रकार निवेदन करने पर अच्छा है कल्याण हो इस प्रकार कहकर धर्षण भट्टारक ने उन दोनों साधुओं को आश्वासन दिया। इसके बाद कहते हैं भट्टारक भट्टारक अरहंत को भी कहते हैं, वो बात अलग, ये अरिहंतों को भी भट्टारक अरिहंत भट्टारक कहते हैं। इसके बाद भगवान धर्षण ने विचार किया कि ये 62 और 63 पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ देखेंगे। सेल घन भग घड़ चारणी महिषा विषावे मट्टी मसय समानम वखाण जो सुदम मोहा दधगारव परिबद्धो विषयामि स विषवसेन गुम्मन्तो सो भट्ट बोहिलाहो भमै चिरं भववने मूढ़ो। केते शैल घन भग्न घट अहियने सर्प चालनी महिष अवियने मेंढा जाहक एने जोंक शुक एने तोता है ना माटी और मशक के समान श्रोताओं को जो मोह से श्रुत का व्याख्यान करता है, यानी ये श्रोता भी कैसे चाहिए ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे श्रोताओं को मोह से जो व्याख्यान करता है यानी वक्ता अगर मोही है इनको सुनाने का, वह मूढ़ यानी जो व्याख्यान करता है उसको कह रहे हैं। दृढ़ रूप से रिद्धि आदि तीनों प्रकार के गारवों के अधीन होकर विषयों की लोलुपता रूपी विष के वश से मूर्छित हो बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति से भ्रष्ट होकर भवन में चिरकाल तक परिभ्रमण करता है। अभी उसका खोलकर बताएंगे क्या अर्थ है, यानी कैसे श्रोता चाहिए और कैसे नहीं चाहिए होता है। ये तो इनको मुंह से उपदेश करते नहीं, ऐसा नहीं चाहिए बात है ना। विशेषार्थ शैल घन बताया था ना, शैल नाम पाषाण का है और घन नाम मेघ का। जिस प्रकार पाषाण मेघ के चिरकाल तक वर्षा होने करने पर आर्द्र या मृदु नहीं होता, उसी प्रकार कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जिन्हें गुरुजन चिरकाल तक भी धर्मामृत के वर्षन या सिंचन द्वारा कोमल परिणामी नहीं बना सकते हैं। ऐसे श्रोताओं को शैल घन श्रोता कहा है। दूसरा नाम है भग्न घट। भग्न घट फूटे घड़े को कहते हैं। जिस प्रकार फूटे घड़े में ऊपर से भरा गया जल नीचे की ओर से निकल जाता है, भीतर कुछ भी नहीं ठहरता, इसी प्रकार जो उपदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं उन्हें भग्न घट श्रोता कहा है। अहि नाम सांप का है। सांप के समान है ना। जिस प्रकार मिश्रित है ना, शक्कर मिला हुआ दुग्ध के पान करने पर भी सर्प विष का ही वमन करता है, यानी दूध पिया इसलिए वो तो विष छोड़ देगा ऐसा नहीं है, उसी प्रकार जो सुंदर मधुर और हितकर उपदेश के सुनने पर भी विष वमन करते हैं अर्थात प्रतिकूल आचरण करते हैं उन्हें अहि समान श्रोता समझना चाहिए। चालनी जैसे उत्तम आटे को नीचे गिरा देती है और भूसा या चोकर को अपने भीतर रख लेती है, उसी प्रकार जो उत्तम सार युक्त उपदेश को तो बाहर निकाल देते हैं और निस्सार तत्व को धारण करते हैं वे चालनी समान श्रोता है। महिषा अर्थात भैंसा जिस प्रकार जलाशय से जल तो कम पीता है परंतु बार बार डुबकी लगाकर उसे गंदला कर देता है, उसी प्रकार जो श्रोता सभा में उपदेश तो अल्प ग्रहण करते हैं पर प्रसंग पाकर क्षोभ या उद्वेग उत्पन्न कर देते हैं वे महिषा समान श्रोता है। अविनाम मेष यानी मेंढा। जैसे मेंढा पालने वाले को ही मारता है उसी प्रकार जो उपदेशदाता की ही निंदा करते हैं और समय आने पर घात तक करने को उद्यत रहते हैं उन्हें अवि के समान श्रोता समझना चाहिए। जाचक नाम सेही आदि अनेक जीवों का है। जाहक नाम सेही आदि अनेक जीवों का है पर प्रकृत में यानी यहाँ पर जोक अर्थ ग्रहण किया गया है। जैसे जोक को यानी जोक समझते हैं जड़ मराठी में उसको लीच, अंग्रेजी में
लीच
जड़ा, वो पकड़ लेती है खून चूसती है
जड़ा।
जैसे जोंक को स्तन पर भी लगावे तो भी वह दूध न पीकर खून ही पीती है, इसी प्रकार तो उत्तम आचार्य या गुरु के समीप रहकर भी उत्तम तत्व को तो ग्रहण नहीं करते पर अधम तत्व को ही ग्रहण करते हैं वे जोंक के समान श्रोता है। शुक नाम तोते का है। तोते को जो कुछ सिखाया जाता है वह सीख तो जाता है पर उसे यथार्थ अर्थ प्रतिभासित नहीं होता, उसी प्रकार उपदेश स्मरण कर लेने पर भी जिनके हृदय में भाव भासना नहीं होती वे शुक समान श्रोता है। अब मिट्टी के समान बताएं। मट्टी जैसे जल के संयोग मिलने पर तो कोमल हो जाती है पर जल के अभाव में पुनः कठोर हो जाती है, इसी प्रकार जो उपदेश मिलने तक तो मृदु परिणामी बने रहते हैं और बाद में पूर्ववत ही कठोर हृदय हो जाते हैं वे मट्टी के समान श्रोता हैं। मशक भूल जाते हैं, यह अच्छा लगता है। मशक अर्थात मच्छर पहले कानों में आकर गुनगुनाता है, चरणों में गिरता है, किंतु अवसर पाते ही काट खाता है। उसी प्रकार जो श्रोता पहले तो गुरु या उपदेशदाता की प्रशंसा करेंगे, चरण वंदना भी करेंगे, पर अवसर आते ही काटे बिना न रहेंगे, उन्हें मशक के समान श्रोता समझना चाहिए। उक्त सभी प्रकार के श्रोता अयोग्य है, इन्हें उपदेश देना व्यर्थ है। किसी किसी शास्त्र में उक्त नामों से तथा अर्थ में भेद भी दिखने में आता है, किंतु कुछ श्रोता का भाव यहाँ पर अभीष्ट है। यानी ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में या अन्य अन्य ग्रंथों में या उसमें भी बताया, मेरे ख्याल से पीठिका में है ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका के, यानी थोड़ा सा नाम डिफरेंस है, परंतु बात तो यही बताना चाहते हैं। यहाँ कह रहे 71 पृष्ठ, इस वचन के अनुसार, यानी अभी जो गाथा बताई इसके अनुसार, यथा छंद अर्थात स्वच्छंदता पूर्वक आचरण करने वाले श्रोताओं को विद्या देना संसार और भय का ही बढ़ाने वाला है। यानी ये वक्ता का कर्तव्य है, किसको उपदेश दे रहे हैं। तो स्वच्छंदता से आचरण करने वाले श्रोताओं को विद्या देना या अपना संसार बढ़ाना, ऐसा विचार कर शुभ स्वप्न के देखने मात्र से ही, यद्यपि दर्शन भट्टारक ने उन आए हुए दोनों साधुओं के अंतर अर्थात विशेषता को जान लिया था, तो भी फिर से उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वैसे तो इतने तो अष्टांग ज्ञानी थे, तो उन्होंने उनको देखने मात्र से पता चलता है, फिर भी क्योंकि उत्तम प्रकार से ली गई परीक्षा हृदय में संतोष को उत्पन्न करती है। इसके बाद दर्शनाचार्य ने उन दोनों साधुओं को दो विद्याएं दी। विद्या देने उनको कोई मंत्र देगा, उनमें से एक अधिक अक्षर वाली थी और दूसरी हीन अक्षर वाली थी। दोनों को दो विद्याएं देकर कहा, इनको षष्ठ भक्त उपवास अर्थात दो दिन के उपवास से सिद्ध करो। इसके बाद जब उनको विद्याएं सिद्ध हुई, तो उन्होंने विद्या की अधिष्ठात्री देवताओं को देखा। एक देवी के दांत बाहर निकले हुए हैं और दूसरी कानी है। विकृतांग होना देवताओं का स्वभाव नहीं होता। यानी देवता वो विकृतांग है, ऐसे उनका देह या शरीर जो है समय चतुरस्त्र वगैरह होता है, विकृत अंग वाले नहीं होते। इस प्रकार उन दोनों ने विचार कर मंत्र संबंधी व्याकरण शास्त्र में कुशल उन दोनों ने हीन अक्षर वाली विद्या में अधिक अक्षर मिलाकर और अधिक अक्षर वाली विद्या में से एक अक्षर निकालकर मंत्र को पढ़ना अर्थात फिर से सिद्ध करना प्रारंभ किया, जिससे वे दोनों विद्या देवताएं अपने स्वभाव और अपने सुंदर रूप में स्थित दिखलाई पड़ी। तदनंतर भगवान दर्शन के समक्ष योग्य विनय सहित उन दोनों के विद्या सिद्धि संबंधी समस्त वृत्तांत के निवेदन करने पर बहुत अच्छा इस प्रकार संतुष्ट हुए दर्शन भट्टारक ने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभवार में ग्रंथ का पढ़ाना प्रारंभ किया। इस तरह क्रम से व्याख्यान करते हुए दर्शन भगवान से उन दोनों ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पूर्वाह्न काल में ग्रंथ समाप्त किया। नहीं नहीं नहीं, वो अलग, वो तो श्रुत पंचमी जब ये पूरा हुआ था ना, षटखंडागम, हाँ ये तो दर्शनाचार्य ने सिखाना, यानी वो तो ये अभी गए एकादशी गई वही ना कल परसों की आषाढ़ी एकादशी, ये अभी ख्याल में रखने को आसान है। हाँ नहीं समझे, इन लोगों को होता है ना आषाढ़ी एकादशी, वो पंढरपुर में जाके उसको आषाढ़ी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विनय पूर्वक ग्रंथ समाप्त किया। इसलिए संतुष्ट हुए भूत जाति के वेंतर देवों ने उन दोनों में से एक की पुष्प बलि तथा शंख और सूर्य चाती के वाद्य विशेष के नाद से व्याप्त बड़ी भारी पूजा की। उसे देखकर धरसेन भट्टारक ने उनका भूत बलि यह नाम रखा तथा जिनकी भूतों ने पूजा की है और अस्त व्यस्त दंत पंक्ति को दूर करके भूतों ने जिनके दांत समान कर दिए हैं ऐसे दूसरे का भी धरसेन भट्टारक ने पुष्प दंत नाम रखा। यही रुकेंगे अभी हम, बाकी की स्टोरी कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देतो। अश्विन
नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो ओर्जनम नमो लोय सप्रस्तावनम नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो ओर्जनम नमो लोय सप्रस्तावनम।